వాంఛాకల్పస్వరూపస్త కృపా సింధుభైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమావం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినేతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష సున్నవాదీ పాశ్చాత్య దిశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీఅద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి శ్రీ గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ముఖం కరోతి బాచలం పొంగులం హేత గిరి జత్కృపాతమహం వందే పరమానంద మాధవం శ్రీగురుదినతరణం శ్రీ చైతన్య ఈశ్వరం. तो काल हम लोग मृत्यु के बारे में चर्चा किए थे. तो मेरा प्रवचन का अंत में मैं बताया था जो कैसे भागवत में ये सब वर्णन आता है. कपिलदेव बोलते हैं तो नारी पुरुष के लिए माया है, भगवान उनका माया शक्ति का नारी का स्वरूप में प्रकट किए, और नारी पुरुष का मृत्यु का कारण है. तो फिर नेक्स्ट वर्ष में ये भी बताते हैं सिर्फ नारी पुरुष का मृत्यु का कारण ऐसा नहीं, पुरुष भी नारी का मृत्यु का कारण होता है. तो उन्होंने बताते हैं तो पुरुष नारी पुरुष के लिए एक तृण आच्छादित कुआ और कूप जैसा होता है. तो कोई जंगल में इसमें गड्ढा होता है तो घास या तृण आच्छादित हो जाता है, दिखाई नहीं जाता है, तो उसमें जो घुस जाता है वो तो मरते हैं. और नारी के लिए पुरुष को बोलते हैं जैसे हंटर शिकारी बांसुरी बजाते हैं मोहन करने के लिए, आकर्षण करने के लिए, नारी के लिए पुरुष भी ऐसा ही है. पुरुष लोगों ने नारी लोगों का मोह में गिर जाता है, इसलिए तो नारियों में इसे शक्ति है. जब पुरुषों को आनंद देने के लिए वो शक्ति लेकर उत्पन्न हुई, जन्म हुई, तो इसीलिए उनका मोह आता है. उनका सेवा, नारियों का सेवा सबको अच्छा लगता है. नारी का मतलब सिर्फ पत्नी का सेवा, पति को अच्छा लगता है ऐसा नहीं. नारी में वो आनंद देने वाला शक्ति स्वभाव भगवान ने दिए हुए बचपन से ही. एक कन्या पिता को बहुत आनंद देते हैं ना, आप लोग देखते नहीं पहले जमाने में, आजकल तो दूसरा बात है, लेकिन पहले जमाने में एक पिता के लिए तो उन कन्या को ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा होता है ना, पुत्र को ज्यादा प्यार करते नहीं. आजकल तो कलयुग हो गया, कन्या को गर्भ में हत्या कर देते हैं, लेकिन वैदिक युग में ऐसा नहीं था. पिता हर समय उसका कन्या को ज्यादा प्यार करते हैं. एक घर में दो तीन भाई दो तीन बहन होता है तो भाई भाई में संपर्क ज्यादा नहीं होता है, भाई बहन में संपर्क अच्छा होता है ना, भाई बहन को यह सब प्यार करते हैं. तो स्वामी स्त्री जब घर में बच्चों के लिए, बच्चों पिता को इतना प्यार करते हैं, माँ को ज्यादा प्यार करते हैं. ये नारी सुलभ गुण ही उधर है, इसमें ही हर समय वो आनंद देने के लिए भगवान उसको प्रकृति करके बना है. उसका संपर्क में जो भी आएंगे तो उनका आनंद दे रहे हैं, इस स्वभाव ही है उन लोग उनका अंदर में. तो कोई तो संसार जीवन ठीक नहीं है. संसार जीवन में तो ऐसा हम लोग पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, पिता का साथ, भाई भाई का साथ ऐसा संपर्क होता है, भाई बहन के साथ. इसलिए प्रभुपाद नेक्स्ट वर्ष में क्लियर करते हैं ये माया है. माया का डेफिनेशन, माया क्या है, माया एक चीज होता है जो चीज जो है उसको दूसरे मस्तिष्क को समझना देखना इसको माया बोलते हैं। तो जो स्त्री पुरुष होता है उसमें से इसको मतलब ज्यादा अटैचमेंट होता है, इसलिए प्रभुपाद यही बताते हैं स्त्री पुरुष में अटैचमेंट कम होना चाहिए। पहले जमाना में प्रभुपाद प्रॉपर्टी में लगते हैं तो विवाहित पुरुष जो स्त्री को पत्नी को शादी किए वो लोग भी ज्यादा आपसे नहीं मिलते थे, इसलिए सम्राट परिवार में महिला लोगों के लिए दूसरा पैलेस बनाते थे और पुरुषों के लिए दूसरा पैलेस बनाते थे। दिन में इतना फ्री मिक्सिंग नहीं था, तो रेस्ट्रिक्शन था, तो वो जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट को कृष्ण केंद्रित अटैचमेंट करना चाहिए। जैसे बताते हैं भगवान का साथ हमारा जो संपर्क वो प्रेम है। इस भौतिक में जो संपर्क हम लोग बोलते हैं तो मैं इसको प्रेम करता हूँ, आई लव, पर प्रेम नहीं है, काम है। हर संपर्क, हर प्राणी, हर मनुष्य में जो संपर्क है एक काम ही है। स्वामी स्त्री का संपर्क सिर्फ नहीं, पिता पुत्र का संपर्क का पिछले भी कामना है, कुछ डिजायर, सेल्फ डिजायर है। हर संपर्क में कुछ कामना है, तो सिर्फ जीत जीत को प्यार कर नहीं सकता है, जीत जीत का संपर्क नहीं, जीत जीत को प्यार कर नहीं सकता है, जीत सिर्फ भगवान को ही प्यार कर सकता है। जीत का साथ जो निर्मल संपर्क भगवान का साथ, जीत का जो निर्मल संपर्क उसको प्रेम बोलते हैं। और प्रेम का प्रतिफलन, विकृत प्रतिफलन इस भौतिक जगत पर उसका काम बोलते हैं। क्योंकि हर जीवों के लिए आनंद चाहिए, कि आनंद हर जीवात्मा का स्वाभाविक वृत्ति होता है। जीवात्मा सब चीज आनंद होता है, नित्य ज्ञानमय आनंदमय होता है, लेकिन इस भौतिक जगत आने के बाद वो अनित्य वस्तु को आप स्वयं करके मानते हैं, अज्ञान का अंदर में रहते हैं और आनंद नहीं पाते हैं। लेकिन आनंद उनको चाहिए, जिसे प्रभुपाद ने बताया कोई लोग मरने चाहते नहीं, क्यों मरने चाहते नहीं? हम लोग जीने के लिए कोशिश करते, मरने के लिए क्यों कोशिश करते नहीं? इसका कारण जीवों का स्वभाव प्रवृत्ति नित्य है, उसका स्वभाव नित्य है, इसलिए मरने चाहते नहीं। हर मनुष्य हर जीवन में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आहार प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। सुबह में नींद से जागने से ही न्यूज पेपर पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, रेडियो सुनते हैं और जानने चाहते हैं, जानने चाहते हैं। तो ज्ञान, इधर ज्ञान का अभाव है, इसलिए ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति जो जैसा है उसी तरफ वो जाने चाहते हैं। आनंद, आनंद सब चीज आनंद, उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति आनंद में रहना, इसलिए कोई दुख पाने के लिए कोशिश करता है, करते नहीं। हर आदमी आनंद प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, तो दुख प्राप्त करने के लिए क्यों कोशिश करते नहीं? क्योंकि तो जीव का स्वाभाविक प्रवृत्ति है आनंद। तो आनंद किससे प्राप्त होगा? आनंद किससे प्राप्त होगा? भगवान से बता, आप लोग बोलते हैं लेकिन आनंद, सुख या आनंद हर जीवों के लिए भिन्न भिन्न होता है ना? एक सुअर, सुअर ठीक है, सुअर ठीक, वो खाने के लिए क्या आनंद मिला, क्या खाने से उसका आनंद मिलता है? लुची पूरी रसमलाई, नो, सुबह सुबह फ्रेश चूल डिस्टा खिलाओ, बहुत दिन अच्छा मरा, आज दिन बहुत अच्छा खाता है, वो बहुत आनंद मिलेगा। एक सुअर का अच्छा पक्के वाला केला मधु में डुबा के इसको दिखाएंगे, वो मुंह मुड़ के भाग जाएगा, उसका अच्छा नहीं लगेगा। तो आनंद एक रिलेटिव अपेक्षित चीज होता है। सुअर के जो आनंद का कारण होता है, मनुष्य के लिए दुख का कारण होगा। कोई एक मनुष्य को प्लेट में फ्रेश चूल लगे देगा, उसमें ब्रेकफास्ट है हालत खराब हो जाएगा ऐसा है ना? तो पशुओं को आनंद देता है, मनुष्य का आनंद नहीं देता है खाने के लिए, ठीक है ना। तो मनुष्य में अमेरिकन लोगों को खाने से जिससे आनंद आता है, भारतीय लोगों को खाने से उससे आनंद आते नहीं। भारत में भी दक्षिण भारत के लोगों के लिए खाना का तरीका दूसरा होता है, नॉर्थ इंडियन का दूसरा होता है, बंगाली का दूसरा होता है, सबका खाने का चीज देखे सिर्फ। तो हम लोग बोल रहे तो मैं ऐसा चीज सबको डेफिनेट आनंद देगा नहीं, ऐसा हो सकता है। आनंद के लिए जितना कोशिश करते ना, ये आनंद सब भिन्न भिन्न होता है, फर्क फर्क होता है। जैसे आज भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने एक गोली मत खोले थे रेंगून में महीना मार में, तो जब कुछ उत्सव अनुष्ठान होता था तो प्योर घी गाय का घी में वो लोग लुच्ची पूरी फ्राई करते थे, तो लुच्ची पूरी फ्राई करके सुगंध जाता था, तो गाँव में भर जाता था। लेकिन रेंगून मैनामर लोग को घान जाता था ना, हाँ वो अच्छा नहीं लगता था, वो लोग घुसा करके लाठी लेके आते थे, अरे साधु लोग तुम लोग क्या बनाते हो उधर, तो दुर्गंध में रह नहीं सकते हम लोग, वो घी का गंध दुर्गंध लगता था। और सुगंध क्या है उन लोग के लिए, उधर हर गांव गांव में एक बड़ा करके स्टोन पत्थर का क्या बिस्पाट रखते थे, पात्र रखते थे, और गांव में साल भर जितना कुत्ता बिल्ली जंतु जानवर जितना मर जाते थे उसको इकट्ठा करके रखते थे, और वो पकता था उधर सड़ता था तो जूस निकलता था। तो साल में एक बार उन लोग फेस्टिवल होगा, गांव के लोग आएंगे बाकी लेके, हाँ उन लोग फिर सामान को स्पून में डिवाइड करके, की सुंदर गंदा है वो गंध का अच्छा लगता है, चिंता करके देखिए। जैसे देखिए आनंद, हर तरीके का आनंद होता है, क्या आनंद है ये भी मालूम होना चाहिए। एक दूसरा चैप्टर है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। ये भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न भिन्न जीव को आनंद भिन्न भिन्न वस्तु से होता है, ये प्रकृति का गुण का प्रभाव के कारण, ये असल आत्मा का आनंद नहीं है। तो जो सत्वगुणी लोग होता है साथा उनको दूध माखन लूची स्वीट राइस पाते हैं तो वो लोग आनंद पाते हैं। जो रजोगुणी लोग होता है वो लोग इससे आनंद नहीं आता है, वो लोग मदिरा पान करेंगे, मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, बहुत आनंद होता है। तो तमोगुणी लोग होता है तीन चार दिन का सड़ा हुआ भात वो लोग अच्छा लगता है, सूखा वाला मांस मछली वो लोग अच्छा लगता है, गंध बहुत अच्छा गंध लगता है। तो आत्मा का आनंद नहीं होता है, आत्मा जो गुण का दर प्रभावित होता है तो गुण का माफिक ऐसा आनंद प्रतिमान होता है और लगता है ऐसा सुख है। लेकिन आत्मा के लिए आनंद चाहिए, तो आनंद किससे आता है, किसी लोग को बहुत पैसा मिलेगा तो आनंद आता है, ऐसा होता है ना, वो तो पैसा ही इनकम करता है, पैसा ही इनकम करता है, वो अच्छा तरह अच्छा खाते नहीं, अच्छा पहनते नहीं, बहुत पैसा है तो पैसा खर्च करके थोड़ा एंजॉय करो, उससे उसका आनंद नहीं आता है। और करोड़ रुपया बनाएगा इसमें से आनंद आता है, पैसा बनाने से आनंद आता है, किसको सुंदर स्त्री से आनंद आता है, भिन्न भिन्न लोग को भिन्न भिन्न वस्तुओं से आनंद आता है। लेकिन इस सब कुछ का आनंद आने का मूल कारण क्या होता है, ये आनंद का मूल कारण क्या है, इसका उच्च क्या है। जैसा दिल्ली में कोई रहते हैं, दिल्ली में दिन भर हजारों लाखों लोग आते हैं, उससे हमको आनंद नहीं आता है, आता है आता है लोग जाते हैं, मेरे को आनंद नहीं आता है। आपका पिताजी 10 साल अमेरिका गए थे, 10 साल के बाद में आज वापस आएंगे घर पर, आनंद लगेगा, हाँ हाँ कि ना, क्यों लाखों आदमी आते हैं आपको आनंद नहीं लगता है, अब पिताजी आएंगे आपको आनंद लगेगा, क्यों हाँ, इसको प्यार करते हैं, हेलो मैं और प्रेम, तो प्यार करने से आनंद आता है, आनंद का उच्च प्यार है, प्यार करना। आपको मिठाई खाने के लिए अच्छा नहीं लगता है, आप अच्छा रसगुल्ला ले आएगा सामने रख रहा है, आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, आनंद नहीं आएगा, तो प्यार नहीं आपको। तो प्यार करना जीव का स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है। तो भगवान को प्यार करता था, भगवान को प्यार करके आनंद पाता था। जब भगवान को करके इधर आ गया तो भगवान को नहीं तो आनंद तो चाहिए, भगवान नहीं आनंद चाहिए तो आनंद के लिए किसी को ना किसी को प्यार करना पड़ेगा। तो जो सामने में आता है उसको प्यार करता है, ओ मैं तुमको प्रेम करता हूँ। और भौतिक जगत में प्रेम का ऐसा लक्षण होता है जिसके साथ तुम प्यार करो, प्रेम करो ना क्या, तो अंतिम एक लाठी मिलेगा तुमको मुंह में। उसको नहीं नहीं उसको प्यार करूंगा और एक लाठी मिलेगा, नहीं नहीं उसको प्यार करूंगा, ऐसा करते रहेंगे। और सबको ज्यादा प्यार करते हैं किसके साथ, किसको ज्यादा प्यार करते हैं हम लोग, इस शरीर को। हाँ इस शरीर को ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो शरीर भी एक दिन लाठी मारेगा। तो भौतिक जगत में जीवन क्या करता है, जन्म जन्मांतर में सिर्फ कोशिश करते ढूंढते किसको प्यार करना है, इसका अनुसंधान करते हैं। ये जिंदगी भर जन्म जन्मांतर में जीवन ढूंढते रहते हैं मैं किसका साथ प्यार करूंगा। तो जिसको प्यार करना है उसको भूल गया ना, तो किसी को तो प्यार करने पड़ेगा। तो सही वस्तु कौन है, किसको मैं प्यार करूं, किसको मैं प्यार करूं? हाँ तो आत्मा को, आत्मा को प्यार करना ना, भगवान को प्यार करना। भगवान को भूल गया तो भगवान ही प्रेमास्पद होता है, तो प्रेम का विषय होता है और हम लोग प्रेम का आश्रय होते हैं। हम लोग जो आपस में प्रेम करते हैं, तुम प्रेम का विषय नहीं हो, हम लोग सब प्रेम का आश्रय है, भगवान का प्रेम का विषय है। तो भगवान को प्यार करने से प्रेम करते हैं तो हम लोग को आनंद प्राप्त होता है। तो हम लोग आपस में प्रेम कर नहीं पाएंगे, हम लोग आपस में प्यार कर नहीं पाएंगे, ये तक बहुत बड़ा बात है। कैसा लोगों को दे रहे, तो पुत्र पिता को प्रेम नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, स्वामी स्त्री को प्रेम नहीं करेगा, एक सीधे भगवान को भी प्रेम करेंगे तब सबको घृणा करेंगे। भगवान को प्यार करो, प्रेम करो और सबको घृणा करो, नहीं ऐसा नहीं। तो प्रेम और काम कैसा होता है, जो कुछ संपर्क जो प्यार करते हैं भगवान को केंद्र में रख के प्यार करते हैं उसको प्रेम बोलता है, भगवान को छोड़ के जो प्रेम करते हैं उसको काम बोलते हैं। जैसे स्त्री वाइफ पत्नी वो तो कुछ थोड़ा माया होते हैं, लेकिन भागवत में बताते हैं पत्नी पति के लिए इस भगवत सागर को पार करने के लिए नाव का माफिक होता है, बोट है। पत्नी को एक तरफ बड़ा माया है, बंधन का कारण है, संसार का बंधन का मूल कारण पत्नी होता है। फिर उसी भागवत में भी बताते हैं पत्नी पति के लिए इस भगवत सागर को अतिक्रम करने के लिए नाव का माफिक होता है। तो इस माफिक पति का पत्नी प्रति जो आसक्ति होता है वो आसक्ति बंधन का कारण हो सकता है, वो आसक्ति मुक्ति का कारण भी हो सकता है, वो आसक्ति प्रेम हो सकता है और काम भी हो सकता है। वो आसक्ति और प्यार करना कब प्रेम हो सकता है, जब भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के कोई प्यार करते हैं उनको पति को पत्नी को, ओ मेरा पत्नी कितना अच्छा है, मेरा पत्नी रात को 3 बजे जागती, भगवान के लिए पकाते हैं, मंगल आरती करते हैं, भगवान का मंदिर मार्जना करते हैं। इस लक्षण को देख के जो पत्नी के प्रति आसक्ति होता है वो पत्नी के प्रति जितना ज्यादा आसक्ति बढ़ेगा वो भव बंधन से उतना उसका लिबरेशन छुटकारा मिलेगा। हाँ इसको देख के जितना आसक्त बढ़ेगा तो भव बंधन से उतना छुटकारा मिलेगा। नहीं वो सोचेगा, ओ मेरा पत्नी कितना अच्छा है, मैं जब 9 बजे नींद से जागता हूँ मेरे लिए कॉफी ले आता है, चाय भी पिलाते हैं, मैं ऑफिस से वापस आता हूँ मेरा शू खोल देता है पैर से, मेरा कोट भी निकाल देते हैं, हाँ मेरा पत्नी कितना अच्छा है। वो प्रेम नहीं होता, वो काम होता है, बंधन का कारण होता है। तो आज का जो विषय माया उसके बारे में बताऊंगा अभी। तो भगवान का अनंत शक्ति है, भगवान का अनंत शक्ति को 3 प्रधान शक्ति होता है। भगवान का अंतरंग शक्ति होता है, बहिरंग शक्ति होता है और तटस्थ शक्ति होता है। तो अंतरंग शक्ति योग माया बोलते हैं, बहिरंग शक्ति को महामाया बोलते हैं। आप लोगों को मालूम है हर जीवों का मूल रहने का स्थान गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत होता है। तो कृष्ण बोली जय जी भगवान सा करे निकटस्थ माया करे झपटिया धरे। भगवान का दो माया काम करते हैं, एक माया आध्यात्मिक जगत में योग माया काम करते हैं, जिसका द्वारा भगवान सब कुछ आध्यात्मिक जगत को प्रकाश करते हैं, उनका कार्यक्रम का संचालन करते हैं। और भगवान का और एक माया तो महामाया इस भौतिक जगत को प्रकट करता है, तो महामाया का द्वारा इसको कार्यकलाप को संचालन करते हैं, ये महामाया होता है। तो इस भौतिक जगत में हम लोग आने का कारण क्या है? ना कृष्ण भूलि जय जी भगवान सागर, कृष्ण से पृथक होकर भोग करने के लिए जब वासना जागते हैं, प्रभुपाद ने बताते हैं भगवान वांछा कल्पतरु होता है। जीव भगवान का बंधु होता है, बंधु बंधु का वासना को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो जीव जब चाहते हैं मैं तुमसे पृथक होकर कुछ भोग करने चाहता हूँ, तो भगवान उनको वासना को उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो कृष्ण भूलि जय जी भगवान सा करे निकटस्थ माया करे झपटिया धरे। तो माया तो हम लोग इधर ले आता है, तो इधर भौतिक जगत में एक अवस्था खूब खराब है। इधर दुखालम अस्वस्थम, इस भौतिक जगत को वैदिक साहित्य में उसका साथ कंपेयर करते हैं, जैसे ये भव सागर है, भव सागर, भव कूप, भव अटवी, संसार कारागार, संसार दावानल, ये दावानल जैसा है। विषय विषानल दीवाने की हिया जले परिवार नादे की उपाय, विषय विषानल के द्वारा हर समय दग्धीभूत होता है, हर समय जीवन में दग्धीभूत होता है, ये संसार दावानल के द्वारा दग्धीभूत होता है। तब एक प्रश्न आता है, तो भगवान का महामाया शक्ति, तो हम लोग इधर आ गए तो इधर तो दुख ही दुख है, तो आग लगा रहा है। कोई मकान में आग लगा दो, आग में मकान जलते रहते हैं, 5-10 आदमी को उधर ले आओ फेंक दो, तो 5-10 आदमी ने क्या करेंगे, क्या करेंगे? उधर तो भागने के लिए कोशिश करें ना, वो भागने के लिए कोशिश करेंगे ना, तो उधर जाके हम लोग क्लास देने पड़ता है, तुम इधर से भागो भागो, सेमिनार करने पड़ता है इधर से भागो भागो, नहीं तो वो लोग को तो भागने के लिए सेमिनार देने पड़ता, नहीं वो समझाने पड़ता, नहीं भागते हैं, तो हम लोग क्यों भागते नहीं? ये संसार विषानल दावानल में दबदीप तो होने से हम लोग कितना अच्छा है, कितना अच्छा, मैं थोड़ा देख जाऊंगा, भागते नहीं क्यों? ये बहुत आश्चर्य की बात है ना, ऐसा जनरल नॉलेज में कोई आग जला हुआ जगह पर फेंक दे तो भाग जाएंगे, तो इधर क्यों हम लोग भागते नहीं? ना भगवान का ये महामाया दो तरीका होता है। एक भगवान का महामाया शक्ति होता है जब जीव का अंदर में ये वासना जागते हैं, मैं पृथक होकर कुछ भोग करूंगा, तो प्रक्षेपात्मिका शक्ति होता है। ये प्रक्षेपात्मिका शक्ति भगवान से जीव को इधर प्रक्षेप करते हैं, निक्षेप करते हैं, तो इधर आ जाता है, तो आ जाएगा, देखेगा इसे दुख है दुख, फिर भाग के भाग जाएगा इधर से। भगवान का दूसरा शक्ति काम करते हैं, इसको आवरणात्मिका शक्ति, जो जीव का ज्ञान को आवरण करके रखते हैं, और दुख को दुख करके मानने नहीं देते हैं, ज्ञान को इतना ज्ञान का आवरण करके रखते हैं, वो असत्य रे सत्य करे माने, असत्य वस्तु को सत्य करके मानते हैं, दुख का सुख करके मानते हैं, अनात्म वस्तु को आत्मा करके मानते हैं। ये माया के ये आवरणात्मिका शक्ति माया शक्ति का ये एक स्वभाव होता है, ये जीवों का ज्ञान को कवरिंग करके रखते हैं। जीव को हर समय ऐसा एक स्वभाव से तुम अभी दुख प्राप्त होता है ना, अभी थोड़ा समय तुम अपेक्षा कर तुमको सुख मिलेगा। जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया ना, गड्ढा 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 गधा होता है ना, वो तो लेजी होता है, काम करने वाला नहीं है, बहुत लेजी होता है। लेकिन जो वाशरमैन वाशरमैन जो भी होता है वो बहुत कपड़ा उनका पीठी पर रखता है और पिटाई करने से वो जाते नहीं जी, इतना लेजी है वो। तो धोबी क्या करता है, उनका सिर पर एक लाठी देते हैं, लाठी से बांधते बांधते उनका मुंह से एक फुट दूर एक सबुज घास ग्रीन घास घास है ठीक ग्रास तो ग्रीन ऐसा झूला रख देते हैं, एक फुट दूर घास देखते वहाँ उनको लोभ लगता है, वो सोचता है अभी मैं चलने शुरू करूंगा। चलने वाले नहीं है, लेकिन जो क्रीम देखता है बहुत सबुज वेरी नाइस ग्रीन ग्रास, तो एक पैर आगे जाता है तो सोचते मेरे को घास मिलेगा, अभी ग्रास मिलेगा, तो ग्रास क्या होता है तो एक फुट आगे चले जाता है। तो उसको सिर पर लगा हुआ है ना, ऐसा लाठी लगा के झूला है, तो एक फुट आगे जा चला जाता है, फिर वो समझते नहीं, तो गड्ढा है वो समझते नहीं, तो और एक फुट जाने से मेरे को मिलेगा, और एक फुट जाता है, सारा दिन भर ऐसा ही करता है। हम लोग का हालत भी ऐसा ही है, माया ऐसा कैरेट झूला है, और थोड़ा और थोड़ा तुमको मिलेगा तुमको मिलेगा, ऐसा करके हम लोग ये माया का प्रभाव ऐसा ही होता है। आवरण तुम शक्ति हमारे ज्ञान को ऐसा छुपा के रखा है, हम लोग को ज्ञान मालूम होता नहीं। ऐसा संसार का आदमी हर जीवों को ऐसा बहुत परिश्रम करने पड़ता है सुख के लिए, फिर सुख प्राप्त नहीं होता है। कैसा सुख प्राप्त हो गया, जैसा एक आदमी था, क्योंकि लोगों ने एक आदमी था वो बहुत भूखा था, दो तीन दिन कुछ खाया नहीं, तो नहीं खाने के कारण उनका पेट में बहुत बैठा दर्द होता था। तो पेट में कभी दर्द होता है बैठा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक किलो लेके चपाता है, इसे करते हैं ना, थोड़ा बैठा थोड़ा दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तो वो लोग क्या किया, एक मंदिर में गया, मंदिर में पिलर था खंबा था, वो पेट को एक खंबा में दबा के रखा, ऐसा करके पकड़ के था रखा, तो पेट को दबा के रखा तो थोड़ा पीड़ा कम हो गया, थोड़ा पीड़ा कम हो गया, तो ऐसा रखा था पकड़ के। तो कुछ देर के बाद एक माता जी आया, उसका हाथ में कुछ प्रसाद था, खई खई मालूम है पपराई मुरमुरा था। तो लोगों ने बताया, देखो माया मेरे को बहुत भूखा है, बहुत पीड़ा होता है, मेरे को कुछ खाने का दो। तो माया ने बताया, ठीक है मेरा बस कुछ प्रसाद है तुम खाओ। तो उसको पकड़ के रखा, छोड़ते नहीं छोड़ते नहीं। तो माया बोला, तुम उसको छोड़ो, इसको लो, नहीं नहीं इसको छोड़ने से मेरे को पीड़ा आएगा। बोला, अरे तुम पीड़ा आएगा, थोड़ा पीड़ा सहन करने से इसको खाने से पीड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जो पीड़ा मिलेगा उसको वो सहन करने नहीं चाहते हैं। तो उसको पकड़ के रखा है ऐसा, और तो मैं कैसा दो, तुम इधर दे दो मुरमुरा, इधर दे दो। तो इधर दे दिया, तो इधर दिया तो पीला है, खाएगा कैसा, वो खा नहीं सकता है, और हाथ अभी फूक देगा तो मुर्मुरा से गिर जाएगा अभी। तो हम लोग का हालत ऐसा ही है, हम लोग थोड़ा भौतिक सुख छोड़ नहीं सकते हैं, इसको छोड़ने से हम लोग बीमार अच्छा हो जाएगा, आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, लेकिन हम लोग इसको छोड़ते नहीं चाहते हैं। हम लोग हिंदी में कहावत है ना, ब्लैंकेट कंबल मेरे को छोड़ने से, मैं कंबल को छोड़ने चाहता हूँ, कंबल मेरे को छोड़ने चाहता नहीं, ऐसा कुछ कथा करने बताते हैं। तो ऐसे हालात होता है, तो माया माया का प्रभाव ऐसा होता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, मेरा माया को अच्छा तरीका पहचानना चाहिए। भगवान का दो तरीका माया होता है, एक योग माया होता है, एक महामाया होता है। देखिए जो असुर लोग होते हैं, असुर लोग तो महामाया का द्वारा परिचालित होता है। तो असुर लोग भगवान को जानते नहीं, भगवान कौन है। जब कृष्णा इस वृंदावन में लीला करते थे, असुर लोगों को मालूम था कृष्ण भगवान है, मालूम था नहीं था, असुर लोगों को मालूम नहीं कृष्ण भगवान है। ठीक है, असुर लोगों को कैसे मालूम होगा, वो तो माया में फंसे हुए, उन लोगों को मालूम नहीं कृष्ण भगवान है। तो माया मुक्त जो जीव जो ब्रजवासी हो, तो माया मुक्त है ना, माया बद्ध है, ब्रजवन माया मुक्त है, उन लोगों को मालूम था कृष्ण भगवान है, मालूम था कि नहीं? उन लोगों को मालूम नहीं था, वो लोग नहीं मानते थे कृष्ण भगवान है, वो लोग गुस्सा करते थे, क्या भगवान बोलते हो, ये हमारा लड़का है जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। ब्रजवासियों को, उन लोग को भी मालूम नहीं था कृष्ण भगवान है, कृष्ण को मालूम था वो भगवान है, जब कृष्ण वृंदावन में लीला करते उनको मालूम था वो भगवान है, उनको भी मालूम नहीं था भगवान है। तो मेरे प्रश्न है, जो असुर लोग होता है उन लोग को मालूम नहीं कृष्ण भगवान है, ब्रजवासियों को मालूम नहीं कृष्ण भगवान है, कृष्ण को भी मालूम नहीं वो भगवान है, तब वो भगवान है। तो कैसा होता, तो क्या फर्क है, जो असुर होता है उनको मालूम नहीं कृष्ण भगवान है, ब्रजवासी शुद्ध भक्त है उन लोग को भी मालूम नहीं कृष्ण भगवान है, जो स्वयं भगवान उनको भी मालूम नहीं वो भगवान है। तो सबको तो ऐसी चीज मालूम नहीं होता है, लेकिन भगवान को मालूम नहीं होता है वो भगवान नहीं है, असुर लोग को मालूम नहीं है तो भगवान नहीं है, उसमें से बहुत बड़ा अंतर फर्क होता है। प्रभुपाद ने एक दृष्टांत देकर बताए, जैसा जैसा एक अंधा आदमी, अंधा आदमी देख नहीं पाता है, उनका दृष्टि शक्ति नहीं, और जो बच्चे लोग खेलते रहते हैं हाइड एंड सीक, गेम है ना हाइड सीक, एक आंखों को बंद करते हैं और सब छुप जाते हैं, तो जब आंखों को बंद करते हैं देख पाता है, वो देख नहीं पाता है, अंधा भी देख नहीं पाता है, दोनों ही देख नहीं पाता है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। उल्टा माफी, जो बद्धक जीव होता है असुर होता है वो भगवान को देख नहीं पाता है, भगवान भगवान का शुद्ध भक्त भगवान को जान नहीं पाता है, इसमें अंतर क्या होता है ना, भगवान लीला विलास करने के क्रीड़ा करने के लिए आपको मैं भगवान हूँ एक ज्ञान उनका चल जाता बाहर हो जाता है, क्योंकि स्वरूप सक्सेस होता है तो खेला कर लीला करने के लिए। इसका भगवान का योग माया और महामाया, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, ये महामाया इस धरती पर ही काम करता है, और माया कैसा हम लोग को माया में हम लोग घुसेंगे, बहुत बड़ा ज्ञानी लोग होने से उन लोग भी मालूम नहीं पड़ता है कैसे हम लोग माया में घुसते हैं। ये माया का प्रभाव जानकारी करने के लिए एक बार नारद मुनि ने वैकुंठ गए थे नारायण को भेटने के लिए, तो नारायण जी तब ऑफिस में बहुत काम था, व्यस्त थे, तो बहुत काम खत्म करने के बाद आए नारद मुनि, क्या चाहिए तुमको, तो नारद मुनि ने बताया प्रभु जी मैं भौतिक जगत पर गया था, उधर मैं देखा आपका एक माया शक्ति काम करता है, तो माया शक्ति क्या चीज है, कैसा चीज माया कैसे काम करता है मेरे थोड़ा समझाइए। तो भगवान विष्णु ने बताया देखो मेरा सारा दिन ऑफिस में काम करते हैं बहुत बोरिंग लगता है, तो फिर वॉकिंग करेंगे, वॉक करके जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा माया कैसे काम करते हैं। तो नारद मुनि को लेकर नारायण वॉक करने के लिए गए, जो वॉक करके जाते थे तो नारद मुनि ने देखे तो अद्भुत जगत में प्रवेश किए, बहुत सुंदर रास्ता था, रास्ता का दो किनारे पर जंग अच्छा बगीचा था, फल फूल में भरा था, बहुत सुंदर सुरम्य स्थान था, तो रास्ते में जाते थे एक क्रसिंग पड़ा, एक क्रसिंग चौराहा पर नारद मुनि को बहुत प्यास आया, प्यास लगा, तो नारद मुनि ने पूछा विष्णु प्रभु जी मेरे को बहुत प्यास आता है, जब कुछ पानी मिलेगा, पानी की कुछ व्यवस्था है, तो बैकुंठ में तो ट्यूबवेल टैप कुछ नहीं है उधर, तो पानी नारद मुनि नारायण जी से देंगे, तो नारद ने मतलब ठीक है पानी नदी में नदी है तुम नदी में जाकर पानी पी के आओ, मैं इस चौराहे पर बैठा हूँ तुम नदी में जाकर पानी पी के आओ। तो नारद मुनि नदी पर गए पानी पीने के लिए, तो पानी पीने के लिए तो बेंच होते थे, बेंच के पानी पियेंगे मुंह में लगाएंगे, तो पीछे से एक आदमी बड़ा नारद मुनि रुकिए। तो नारद मुनि पानी फेंक के पीछे देखे, एक जंगली आदिवासी आदमी था, जंगली आदिवासी आदमी था, तो वो नारद मुनि आप इधर आए हुए, मेरा मकान बहुत नजदीक में मेरा कुटिया है, आप आइए मेरा, मैं उधर से आपको मटका का तत्का पानी पिलाऊंगा, और इतना इधर इतना परिश्रम करके इसका पानी क्यों पीते हैं आप? तो नारद मुनि ने सोचा तो बहुत अच्छा बात है, हाँ इतना इनकन्वीनियंस है, मैं थोड़ा आराम से जाके मटका का तत्का पानी पीऊंगा उधर। तो उसके साथ और घर पर गए तो बहुत अच्छा आसन दिया, बैठाया चर्चा करने के लिए। तो आदिवासी लोगों ने बताया कि नारद मुनि मेरा इतना सौभाग्य है, आप मेरा घर पर पधारे हुए, मैं आपको सिर्फ पानी पिला के कैसा छोड़ दूंगा, आप थोड़ा सा मुझे रुक जाइए, मैं जंगल से जाके जल्दी जल्दी करके थोड़ा फल ले आऊंगा, आप फल खाएंगे फिर पानी भी पियेंगे। तो नारद मुनि सोचे तो ये तो उतार अच्छा बात है, देखो तो फल भी मिलेगा और पानी भी मिलेगा। तो नारायण उधर बैठा है चौटा पर और ये फल पानी खा के फिर फल खाने के लिए चले गए। तो जब फल लेने के लिए हो गया तब वो आदिवासी का अच्छा बहुत सुंदर लड़की था, तो लड़की को बता देखो वो साधु बाबा आए हैं नारद मुनि, मैं फल ले आने के लिए जा रहा हूँ, तुम उनको अच्छा से देखभाल करो, उसको पाखा करो, हवा दो, देखभाल करो। तो जब ये लड़की नारद मुनि को देखभाल करता था तो नारद मुनि थोड़ा आसक्त हो गए लड़की का पति। तब जब आदिवासी आदिवासी वापस आया तो नारद मुनि ने पूछे पानी पानी फल खाए पानी भी पी ले, फिर अंत में पूछे तुम कुछ बुरा नहीं मानेंगे तो मेरा एक प्रस्ताव है तुम्हारे लिए। तो क्या प्रस्ताव है? तो तुम्हारे कन्या को मैं शादी करना चाहता हूँ। तो साथ साथ आदिवासी अहो भाग्य, आप जैसा महामुनि नारद मुनि देवर्षि है, आप मेरा पत्नी का मेरा सॉरी मेरा लड़की का पानी ग्रहण करेंगे, बहुत सौभाग्य की बात है। तो साथ साथ शादी का व्यवस्था हो गया, नारद मुनि शादी करके रह गए, नारायण बैठा है चौथा पर, नारायण चौरा पर बैठा है, नारद मुनि शादी करके रह गए। वो तो गांव आदिवासी जगह था तो शादी करने से तो हरे किस्त हरे नारायण नारायण करने से नहीं चलेगा, दिन अलग सारा दिन नारायण करके तो नहीं चलेगा। अभी सुबह से शाम तक से खेती पर जाने पड़ता था, वो लंगल लेके जाते थे, खेती करते थे, धान करते थे, सारा दिन भर काम करते थे। और एक दो साल बीत गया तो उनका पुत्र लड़का बच्चा बन गया, नारद मुनि सब भूल गए, नारायण को बैठा के उधर आए थे पानी पीने के लिए, पानी से फल मिला, फल से पत्नी मिला, पत्नी से पुत्र मिल गया। तो पत्नी और पति दोनों मिलके एक दिन वो गांव में जो धान कुटाई करता ना, धान पिसाई करता ना, उसको बंगाल में ढेंकी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? है जी, तुम हिंदुस्तानी हो ना बंगाली हो? ये गांव में औरत लोग होता है ना, ढेंकी करते है ना, एक पैर में जमाते हैं और उधर धान देते हैं, हाँ उसको पिसाई करते हैं, उसका चावल निकलता है। तो ढेंकी, तो ढेंकी में वो उसका पत्नी नारद मुनि ढेंकी दबाते हैं, उठाते हैं, खटते हैं, उठाते दिखते हैं, और धान पिसाई करते ना, धान पिसाई करते थे। वो नदी के किनारे पर उनका आवास तक कुटिया था, तो घर का बाहर उनका बच्चा लड़का खेलता था, दोनों घर का अंदर में धान पिसाई करते थे। तो इसमें से एक आवाज आया जैसा कोई नदी में गिर गया था, आवाज आया। तो उनका पत्नी बताया देखो देखो हमारा बच्चा खेलता था वो गिर गया उधर। तो नारद मुनि ने बताया नहीं नहीं बच्चा क्यों गिरेगा, वो दूसरा कुछ गिर गया, बच्चा नहीं गिरेगा। तो नारद मुनि तो सुने नहीं, लेकिन माँ का मन है ना, माँ का मन खुद दुर्बल होता है, इसलिए माँ मन नहीं मैं थोड़ा देख के आऊंगा, हाँ लगते मेरा बच्चा पड़ गया गिर गया ना क्या। तो जब उनका पत्नी गए उन्होंने देखे उनका बच्चा नदी में गिर गया, तो बच्चा को रक्षा करने के लिए उनका पत्नी भी नदी में छलांग लगाए, छलांग लगाए थे। तो वो तो बहुत बड़ा आवाज आया, नारद मुनि अंदर में थे, बड़ा आवाज आया। तो नारद मुनि सोचने लगे क्या हुआ, अभी तो बहुत बड़ा आवाज आया, तो कुछ दुर्घटना हो गया। तो नारद मुनि घर छोड़ के जब बाहर आए तो नारद मुनि ने देखे उनका पत्नी और पुत्र दोनों ही नदी में बह रहे हैं तैरते हैं व बह रहे हैं, तो नारद बच्चा तक मर जाएगा। तो नारद मुनि ने सोचे बच्चा तो मर जाएगा, हमारा पत्नी रहेगा तो फिर तो बच्चा होगा, तो पत्नी को बचाना चाहिए पहले। तो पत्नी को बचाने की कोशिश करते हैं, तो नारद मुनि वो तो बिना बजा के पहले नारायण नारायण करते थे, अभी नारायण को भूल गए तो बिना हाथ में था, हाथ में बिना को पकड़ के रखते थे। तो जब पत्नी नदी में बह के जाते थी तो नारद मुनि वेरी केयरफुल वो छलांग लगाते हैं जाते लगे वो नदी का सिर में रह के, तो बिना में ऐसा लाठी काठी होता है ना, इसको देखे उसको टांगने खींचने के लिए कोशिश करते थे, उसके बाल को देखे बाल को पकड़े खींचने के लिए कोशिश करते थे। तो उनका पत्नी नदी का पानी में बह जाती थी और वो तीर में रह कर ऐसा खींचने की कोशिश करते जाते थे जाते थे जाते थे जाते थे। ऐसा एक टाइम आया वो नदी में लैंड स्लाइडिंग हुआ, धस क्या नदी में माटी धस ऐसा गिर गया, जो जाते थे ना गिर गया, तो नारद मुनि भी नदी में गिर गए। तो नारद मुनि जब नदी में गिर गए तो पानी पीने लगे, डूबने शुरू कर दिए, तो जोर से चिल्लाने लगे नारायण नारायण चिल्लाने लगे। जब नारायण चिल्लाने लगे तो साथ साथ वो देखने लगे, तो पहले पानी पीने के लिए जिस जगह पर गए थे ना उसी जगह पर ही ठहरा है, और कुछ उसी जगह पर ही ठहरा है, और उनका पास नारायण ठहरा है। नारायण का पीछे में हाथ लगा, उसे क्या नारद मुनि अभी समझ गए माया क्या क्या चीज है। तो माया कैसे हम लोग फंसाएगा, ये दिमाग में घुसेगा नहीं। मेरा गुरु माँ एक दिन बताते मेरे को, देखो माया इतना शक्तिशाली, तुम्हें यू गो थ्रू द ब्रांचेस माया विल गो थ्रू द लीफ, तुम्हें डाल में जाएंगे तो पत्ता में जाएगा, और तुम पत्ता में जाएगा तो सिरा सिरा में जाएगा। तो माया ढेरी शक्तिशाली होता है, इसलिए भगवान बोलते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी माया मोह माया दुरुस्त है, इसको जय करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको जय करने के लिए भगवान ने एक उपाय दी, माम एवं जो प्रपद्यन्ते माया में तम, भगवान को हम लोग प्रपद्य करेंगे आत्म को, भगवान मायाधीश होता है, हम लोग मायाधीन और भगवान मायाधीश। अरे भौतिक जगत शास्त्र में बताते हैं अब्रह्म स्तंभ पर्यंत सर्व जगत मायामयम, एक त्रिन से शुरू करके अब्रह्म स्तंभ पर्यंत ब्रह्मा तक कोई बात नहीं बढ़ जाएंगे, हर आदमी हर जीवों को देवताओं को। इसलिए भागवत पहला श्लोक मुज्जन की जतसु रहे, बड़ा बड़ा देवता मुनि ऋषि भी मोहित हो जाता है, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाता है, शिव जी भी मोहित हो जाता है। शिव जी देखिए समुद्र मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन का समय भगवान मोहिनी रूप को प्रकट किए थे, तो उस समय शिव जी देखा नहीं, मोहिनी को दर्शन मिला नहीं, तो बाद में शिव जी भगवान विष्णु के पास गए, विष्णु को बताया कि प्रभु मैं सुना आप मोहिनी रूप प्रकट किए थे, तो मेरा तो सौभाग्य हुआ नहीं आपका मोहिनी रूप को दर्शन करने के लिए, आप कृपा करके थोड़ा मोहिनी रूप को दिखाइए। तो भगवान विष्णु ने पूछे तुम प्रस्तुत हो देखने के लिए, मैं मोहिनी को प्रकाश करूँ तो संभाल पाएंगे आपको? तो शिव जी अरे मैं पार्वती भौतिक जगत सबसे सुंदरी रमणी होते हैं पार्वती, ये तो माया है, तो महामाया है जिसको मैं नियंत्रण करता हूँ, वो मेरे मन को क्या कर नहीं सकता है। मेरे मन को भटका नहीं सकता है, और तुम रूप दिखाई क्या होगा उसको मालूम नहीं। अरे महामाया ये तो भगवान स्वयं, तो भगवान उनका मोहिनी रूप प्रकट किए, सब शिव जी आकर्षित हो गए। शिव जी का पास पार्वती है, गणेश है, कार्तिक है, तब भी उनका बुद्धि गुम हो गया, कुछ ज्ञान हुआ नहीं, तो मोहिनी रूप तो पीछे का पीछे भगवान मोहिनी को प्रकट करके दौड़ने में लगे, और उनका पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है इसको। ये मुज्जन की जाता सुर है, मुनरपी मति भ्रम, ये माया शक्ति ऐसा शक्तिशाली होता है किसी को छोड़ेगा नहीं, अब्रह्म स्तंभ किसी को छोड़ने वाला नहीं, सबको पकड़ के रखा है। क्योंकि भक्त बोलते ना इसको माया पकड़ा है। मैं कह रहा माया क्यों हम लोग को पकड़ने के लिए आया था? माया तो बहुत बड़ा आदमी है, वो हमको हम लोग को पकड़ने के लिए माया का आने का जरूरत होगा ना। उनको दासियों को दास को भजने के लिए हम पकड़ के रखेंगे। हम लोग माया का अंदर में है, थोड़ा हम लोग ऐसा सीट ऊपर उठाएंगे, ए क्या करते हो नीचे जाओ, माया थोड़ा ऐसा घूम भंगी करेगा दास दबाएगा नीचे हम लोग को। तो माया मुनिरपी मत भ्रम, बहुत बड़े देवता लोग होते हैं, मुनि ऋषि होते हैं, उन लोगों का मति भ्रम हो जाता है थोड़ा सा माया का प्रभाव पड़ने से। ऐसे पुराण में चर्चा हुआ, जब व्यास देव ने पुराण शास्त्र रचना करते थे तो जैमिनी ऋषि उल्लेख थे, इसका कहा वो डिक्टेशन देते थे, जैमिनी ऋषि लिखते थे। तो व्यास देव ने बताया जो माया का प्रभाव के बारे में बताते थे कि माया किसी को छोड़ेगा नहीं, सब माया पकड़ेगा। बड़ा बड़ा मुनि रति मति भ्रम, मुनि ऋषि होने से भी उन लोग का भी दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। तो जैमिनी ऋषि बोले ऐसा कैसा हो सकता है, हाँ हम लोग मुनि ऋषि मन को इतना नियंत्रण हम लोग किए, हाँ हम लोग का कैसा मन गड़बड़ हो जाएगा। तो व्यास देव ने बता रहे मैं जो बोलता हूँ उसे लिखना है तुमको, बस तर्क मर्त करो। नहीं 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 ये तो ये सही बात नहीं, मैं कैसे लिखूंगा, वो लिखने नहीं चाह। तो व्यास देव ने बोला ठीक है आज तुम्हारा किताब पैकअप करो घर जाओ, कल आएंगे ठीक है। तो जैमिनी ऋषि घर चले गए जंगल में, कुटिया बना के आश्रम बना के जैमिनी ऋषि रहते थे। तो रात को मिडनाइट बहुत जोर से झड़ तूफान आ गया, बहुत बारिश होता था, डार्क नाइट अंधकार रात था, बारिश होता था, बिजली चमकता था और जोर से आवाज होता था। तो एक कोई चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ रक्षा करो रक्षा करो, चिल्लाने लगा। तो जैमिनी ऋषि ने सोचने लगे कौन ऐसा विपद में विपद आ गया। तो वो थोड़ा खिड़की खोल दे, खिड़की जब खोल ले देखने के लिए क्या हालत है, तो अंधकार है ना तो देख नहीं पाता दे कौन है। तो अंधकार है तब बिजली चमकने लगा लग दी इतना ही, तो उसका रूप को देखा वो औरत नारी थी। तो नारी थी तो सहाय चाहिए उसको, रात को भी आश्रय चाहिए। तो जैमिनी ऋषि का घर पर आया, जैमिनी ऋषि को बुलाया ठीक है रात को मेरे आश्रम में तुम रहो, एक कमरा दे दिए और औरत को बताया तुम इस कमरा में रुको, लेकिन रात को दर्जा नहीं खोलना, जो कोई तुमको बुलाएगा दर्जा नहीं खोलना, मैं आके बोलूंगा तब भी दर्जा नहीं खोलना, अंदर से दरवाजा बंद करके रात को रहना और सुबह तुम इधर से चला जाना। तो लड़की बोला ठीक है, तो दरवाजा अंदर से बंद करके लड़की सो गया और जो मैंने ऋषि भी सोने के लिए गए, तो सोने के लिए कोशिश करता हूँ नींद नहीं आता है, क्यों नींद नहीं आता है, वो जो लड़की का रूप उनका दिमाग में घुस गया ना, इतना गहरा घुस गया उसको निकाल नहीं सकते थे, नींद नहीं आता है नींद नहीं आता है नींद नहीं आता है। तो जैमिनी ऋषि फिर जागे, जग के लड़के के घर पर गए दरवाजे पर थक गए, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। तो लड़की बोला नहीं नहीं मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, नहीं नहीं जल्दी खोलो जल्दी खोलो। तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं खोलूंगी। तो बोला तो हमें को जैमिनी ऋषि ने बताया कोई आएगा तो तुम दरवाजा मत खोलो, तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो जैमिनी अरे मैं जैमिनी बोलता हूँ तुम दरवाजा खोलो। तो लड़की बोला नहीं नहीं जैमिनी ऋषि ने बताया, जैमिनी बोला तब भी नहीं खोलना। तो नहीं नहीं अरे वो बहुत तो अस्थिर होता है, नहीं नहीं खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, तब खोला और लड़की तब से दरवाजा खोल। तो अब जैमिनी ऋषि से बताए तो तुम्हारा रूप माधुर्मा को दर्शन करके मेरा बहुत आकर्षण आ गया, मैं तुमको शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की बोला ठीक है तुम मेरे शादी कर पाएंगे, लेकिन मेरा एक प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा शपथ है प्रतिज्ञा ठीक है हाँ। तो क्या है ना क्या प्रतिज्ञा है, देखो इधर से 2-3 किलोमीटर दूर में एक देवी दुर्गा देवी का मंदिर है, मेरा ये शपथ है जो मेरे को शादी करेगा शादी करने से पहले उसको काम करने पड़ेगा। क्या काम करने पड़ेगा ना, जो शादी करने के लिए चाहेंगे उसको घोड़ा बनने पड़ेगा ठीक है, मैं उनका पर बैठूंगी इधर से तुम मेरे को दुर्गा मंदिर तक ले जाना पड़ेगा, तुम कर पाएंगे? तो जैनी ने किसी का बुद्धि इतना गुम हो गया, हाँ वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अरे करूंगा। साथ साथ जैनी भी घोड़ा बन गए। चिंता करके देखिए, मुनेर अपनी मसीह ब्रह्म घोड़ा बन गए। अरे मोटी लड़की था उसके ऊपर बैठे, अंधा का रात थे, कितना मच्छर कामोड़ते थे, इसको क्या करते थे, काटते थे, मच्छर काटते थे, और पाँव में पत्थर घुस जाता था, और कांटा भी था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। वो कष्ट करके इसको पीछे पर लेकर तो जाते थे, जो जाते जाते हुए दुर्गा मंदिर पर पहुंच गए। दुर्गा मंदिर जब पहुंचे, थोड़ा सुबह का टाइम हो गया था, पूरा अंधार पूर्ण मात्रा से नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा अंधकार था, थोड़ा थोड़ा भी देखा जाता था। तो जब औरत जब घोड़ा को औरत को ले गए दुर्गा मंदिर तक, तब जैमिन ने सोचा अभी तो हो गया, मेरा कंडीशन फुलफिल हो गया, तो अभी तो मैं इससे शादी करूंगा, ये मेरा पति बन गया। तो साथ साथ औरत तो उनका पिट्ठी का ऊपर से उठ गई, तो व्यास जैमिन से जाके साथ साथ हो मेरा पत्नी कल के उनको आलिंगन करने शुरू कर दिए। तो आलिंगन करने के लिए गए, देखे औरत का लंबा लंबा दाढ़ी है, दाढ़ी अरे दाढ़ी कैसा हो गया औरत का, तो अच्छा से अच्छा से देखने शुरू कर दिए। वो थे व्यास देव जी। तो व्यास देव जी थे, तो व्यास देव जी जैमिन के पूछे, क्या जैमिन मैं जो श्लोक बताया तुम लिखने नहीं चाहते थे ना, अभी लिखा जाएगा नहीं लिखेंगे? तो व्यास है उनके सिखाने के लिए एक माया रचना करके एक नारी रूप होकर आए। इसमें ऐसा शास्त्र में वर्णना करते हैं, माया भगवान का माया कितना शक्तिशाली, किसी को भी छोड़ने वाले नहीं, सबको पकड़ेंगे। शास्त्र में जैसे मैं बताया भगवान का माया सिद्ध योग माया होता है, महामाया होता है, महामाया फिर जीव माया होता है, गुण माया होता है, एक गुण माया का द्वारा कैसा संसार का सृष्टि होता है। माया का एक ही काम नहीं, जीव को मोहित करना, हम लोग से तो माया का काम है जीव को मोहित करना, इतना ही नहीं, माया का और बहुत सारे काम है। संपूर्ण भौतिक जगत सृष्टि होता है माया से, माया का ऊपर भगवान दृष्टि निक्षेप करते हैं, सब सब कुछ सृष्टि होता है। भगवान शिव रूप धारण करके, क्योंकि प्रकृति और पुरुष, पुरुष प्रकृति का स्पर्श नहीं करेंगे तो सृष्टि नहीं होगा। अब पुरुष का ऐसा लक्षण होता है तो माया को स्पर्श नहीं करेंगे तो कैसा सृष्टि होगा। इसलिए भगवान विष्णु संभुत्व प्राप्त होता है, संभुत्व प्राप्त होकर फिर क्या करता है ना, प्रकृति को स्पर्श करता है। तो इसे प्रकृति रजोगुण तमोगुण सत्वगुण जो साम्य अवस्था में है, भगवान का दृष्टि निक्षेप होने से उत्प्रवित होता है। तो इसे बहुत बड़ा साइंस है ये माया के बारे में, ये गुण माया बोलते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण होता है। तो ऐसा भगवान माया शक्ति होता है, भगवत गीता में बताया ये माया और मृत्यु को कैसे हम लोग अतिक्रम करेंगे। शेषांग अहम समुद्रतंग मृत्यु संसार सागरात, जो भगवान का शरणापन्न होता है, शेषांग अहम समुद्रतंग मृत्यु संसार सागरात, तो मृत्यु संसार सागर से भगवान उनको रक्षा करते हैं। तो माया भी दैवीय सा गुणमयी मम माया दुरुतया माम एवं जय क्या प्रपद्यंत, प्रपद्यंत का मतलब क्या है, शरणागत है। इस शरणागत बहुत डिफिकल्ट शब्द है, इस बहुत कठिन है शब्द है, सरेंडरिंग टू सरेंडर समबडी, वाह नो सरेंडर नहीं करना, क्योंकि जगत में कोई सरेंडर करने चाहते नहीं, तो सब तंत्र भगवान होने के लिए सरेंडर करना बहुत मुश्किल बात है। तो इसलिए हम लोग भगवान को सरेंडर करना, भगवान के शरण में आना, ये हम लोग सीखना पड़ेगा। शरणागति मन सड़ंगा शरणागति होय छे जहार, ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, छह तरीका शरणागति होता है। इस शरणागति से इसीलिए हम लोग रूपानुग भक्ति जीवन में ज्यादा करके ज्ञानियों को, कर्मियों को, योगियों को, ये सब प्रैक्टिस में उतना शरणागति का भाव जरूरत नहीं है, लेकिन भक्ति में पूर्ण शरणागति है, पूर्ण शरणागति है। तो ज्ञानियों ज्ञानियों का तो अहम दास दास अहम साधना करेंगे फिर बाद में सो अहम, तो शरणागति का भाव नहीं है। लेकिन भक्त का दास भाव, हाँ जन्म जन्मांतर भगवान के पास में जाकर दास भाव ही रहेगा। फिर शरणागति भाव दास और भगवान दोनों में ही होता है। भक्त में शरणागति है और भगवान में भी शरणागति है। भगवान भक्त का शरणागत होता है और भक्त भगवान का शरणागत होता है। इसीलिए भगवान एवं जो प्रपद्यन्ते, जब भक्त भगवान को शरणागत होता है तो भगवान क्या करता है, तो भक्त का भी शरणागत होता है। हाँ, ये प्रपत्ति में एक वैशिष्ट्य है। भौतिक जगत में कोई शरणागत होगा, कोई सर्वेंट बनेगा तो मास्टर उसको एक्सप्लॉइट करेगा, इसलिए कोई सर्वेंट बनना नहीं चाहते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भौतिक जगत में मास्टर बड़ा है और सर्वेंट छोटा है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सर्वेंट बड़ा है। हाँ, इसीलिए भगवान भी चाहते हैं मैं थोड़ा दास बनूंगा। हाँ, भगवान की भी इच्छा होता है। तो भौतिक जगत अंतर होता है। भौतिक जगत में हम लोग दास है, दासों के प्रभु का स्थान लेने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग दुख प्राप्त होता है। तो चिन्मय जगत एक कंपटीशन, हम मैं बस बनूंगा, बस बनने का कंपटीशन चिन्मय जगत में नहीं होता है। मैं दास बनूंगा ये कंपटीशन हर समय चलता है, कौन कितना छोटा हो पाता है। भगवान भी कोशिश करते हैं मैं दास बनूंगा। अरे भौतिक जगत में हम लोग दास है लेकिन प्रभु का आसन लेने के लिए कोशिश करते हैं। इसी के बारे में मैं एक दृष्टांत देके आज का प्रवचन समाप्त करूंगा। तो बांग्लादेश में एक जमींदार था, जमींदार तो दास होके प्रभु का पोजीशन लेके जाने से कैसा गति होगा, इस दृष्टांत से हम लोग मालूम पड़ेगा। एक जमींदार था तो उसका एक मेड सर्वेंट था, मेड सर्वेंट नौकरानी था। तो नौकरानी और फ्लोर मोपिंग परिष्कार, घर परिष्कार करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ घर में कोई नहीं थे तो मालिक भी बाजार करने के लिए बाहर गए थे। तो नौकर ने देखा मालिक जो बेड में सोते हैं वो सॉफ्ट बेड है, नौकर ने घर में तो सॉफ्ट बेड नहीं। तो देखा आज तो कोई नहीं इधर है तो मैं थोड़ा इधर बैठ के देखूंगी कि कैसा है। तो सॉफ्ट बेड में जाकर बैठ गए, बहुत आराम नरम है तो थोड़ा सोके देखूंगा कैसा है। तो लपट गई घर, बहुत इतना आराम मिला तो लपट गए थे तो नींद आ गया। तो नींद आ गया 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, अच्छा से आराम से सो गए इधर। तो इसमें इस समय उनका मालिक आ गए। तो मालिक देखा नौकरानी को मेरा बेड पर सो रहे हो, तो बहुत डंडा लाठी ले आया। लाठी है तुम क्या करते हो, मेरा बेड में तुम सोते हो इधर। तो वो नौकरानी जग गए, मेरा भूल हो गई भूल गई। तो वो मालिक सुना ने तो लाठी ले खूब से पिटाई करने शुरू कर दिया, खूब पिटाई करता है। तो पिटाई करने शुरू किया, नौकर ने वो रोते नहीं वो हंसने लगी, वो और पिटाई करते हैं और हंसते हैं और पिटाई करते हैं, जितना ज्यादा पिटेगा वो हंसते रहते हैं हंसते रहते हैं। तो मालिक सोचे क्या है ये, मेरी तो पिटाई करते हैं हंसते रहते क्यों। तो मालिक ने पूछा तुम्हें पागली बन गई ना क्या, मैं तुमको तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है, मैं तुमको पिटाई झुलाई करता हूँ तुम हंसते क्यों। तो नहीं मेरा दिमाग तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है, मैं तुम्हारे लिए मैं हंसता हूँ क्यों, मेरा दिमाग क्या गड़बड़ है। तो नौकर ने बताया देखो ये जो सॉफ्ट बेड नरम गद्दी है उसका ऊपर मैं आधा घंटा लप किए थे, इसी के लिए मेरा पीछे में इतना डंडा पड़ा। तुम जिंदगी भर इधर सोते हो, तुम्हारे ऊपर कितना डंडा पड़ेगा वही सोच के मेरा हाथी लगता है। तुम इसको मानते नहीं, तुम्हें मालूम नहीं होता है तुमको। तो इस सब का एक ही हालत इस भौतिक जगत में दास होकर प्रभु के आसन पर बैठने के लिए जो हम लोग का इच्छा है ये हर दुख का कारण होता है, ये असली माया होता है। तो हमारा असली जो स्वभाव, मैं दास हूँ, मैं किसी का दास हूँ, किसी का दास हूँ, सही बात है, सही है, नहीं सही नहीं, मैं किसी का दास नहीं हूँ। गोपी भर्तु पदकमलर दास दासानु दासम। भगवान श्री कृष्ण का दास का दास, भगवान का दास हम लोग कोई बन में नहीं पाएंगे, वो दास तक पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ बहुत चैनल है, हाँ उधर पहुंचना इतना आसानी नहीं है। तो दास का दास का दास का दास का दास बन सकेंगे तो जीवन का सफल हो पा देखिए।